namo loe namo siddha paramatma vitaraga aviru.
सर्वज्ञ भगवान की वाणी के अनुसार जो तीन लोक का स्वरूप हमें आचार्यों के ग्रंथों से जानने को मिल रहा है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। अधोलोक के बाद अभी ऊर्ध्व लोक की चर्चा चलेगी, परंतु अधोलोक में से जो व्यंतर भवनवासी उनकी चर्चा चल रही। हमने ये देखा था कि भवनवासियों में 10 प्रकार के पद यानी ग्रेडेशन होते हैं, इंद्र प्रतिंद्र लोकपाल वगैरह वगैरह, और उनके 10 प्रकार के कुल भी होते हैं। असुर कुमार है, नाग कुमार है, उदधि कुमार है, वो सारे हमने चार्ट के द्वारा देखे थे, उसके सब ये बने हैं। ऐसे ही व्यंतरों में 8 प्रकार पाए जाते हैं, उनमें लोकपाल और त्राय संयुक्त नहीं रहते, पर बाकी सब वो ग्रेड्स होते हैं, उनमें कुल भी 8 ही होते हैं। किन्नर किम पुरुष वगैरह उसके नाम हमने 81 पेज पर नीचे देखे थे। हाँ, वो व्यंतर देव के ही ये सारे यानी प्रकार है, उनके प्रकार है ये सारे। क्योंकि हम अपनी भाषा में भूत पिशाच यानी कोई भयानक ऐसी बातें इमेजिन करते हैं, ऐसी बातें नहीं है। ये विक्रिया करके कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं, हमारे आप जैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, टेम्पररी। अब इनके बारे में हमने ये भी देखे थे कि इनके तो भवन कहाँ है, तो ये पृथ्वी के नीचे, जो हमने पहली पृथ्वी के अंदर खर भाग और पंख भाग में हमने इनके भवन देखे थे। अब ये व्यंतर ऊपर भी रहते पृथ्वी के ऊपर, तो ये जो मध्यलोक में जो हम बाद में देखेंगे असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उनमें व्यंतरों के जो इंद्र है वो किन्हीं किन्हीं द्वीपों में उनके नगर है, यानी उनके नगर हमने देखे थे 5-5 उनके होते हैं, लाख लाख योजन इतने बड़े। तो बीच वाला जो है उसको इंद्र का नाम लेना और आगे पुर कहा, हमने उसके नाम देखे थे ना किस तरह से होते हैं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में उसके हमने देखे, तो वो प्रभ कांत आवर्त या मध्य शब्द लगाना चाहिए, जिसकी बात अपनी इतनी यहाँ तक हुई थी। अब उसके आगे हम देखेंगे कि ये जो उनके बड़े बड़े नगर है, पेज नंबर है 82। देखो ये 5 नगरों की बात मैं फिर बताती हूँ। जैसे किन्नर नाम का इंद्र है, तो उसके जो 5 नगर है तो उसके बीच वाले का नाम क्या है, तो वहाँ आगे क्या लिखा है, पुर, किन्नरपुर। उसके पूर्व दिशा में है उसको कहेंगे किन्नर प्रभ, उसके दक्षिण में है वो किन्नर कांत, पश्चिम में किन्नरावर्त और उत्तर में किन्नर मध्य। ऐसे जिस इंद्र का जो पुर होगा, जो नगर होगे, उनमें नाम ऐसे ही होते हैं। यहाँ तक बात चल गई, अब आगे बढ़ेंगे। तो ये जो नगर है 82 पेज पर नीचे का पैराग्राफ, जम्बू द्वीप जितना बड़ा, क्योंकि जम्बू द्वीप 1 लाख योजन वाला विस्तार वाला है, तो इतने बड़े बड़े उनके एक एक नगर एक एक पुर होते हैं। क्योंकि आगे के जो द्वीप है ना वो बहुत बड़े बड़े द्वीप होते हैं, लाख योजन कुछ नहीं उसमें। वे समतल भूमि पर है, समतल भूमि जैसे हम रहते हैं समतल भूमि पर, वैसे उनके नगर भी ऐसे होते हैं। जैसे हम जम्बू द्वीप पर है वैसे उनके अपने अपने द्वीपों पर, उनके जो कोई विशिष्ट द्वीप है उनके नाम भी हमने ऊपर देखे थे, वो नगर बने हुए हैं। अर्थात पर्वतादि प्रदेशों पर या अन्य जगह नहीं, परंतु विवक्षित द्वीपों में भूमि पर बने हैं, यानी पर्टिकुलर द्वीपों में उनके भवन पाए जाते हैं। किन के, इंद्रों के, व्यंतरों के, इंद्रों के, ये बात ही चल रही है। उन नगरों के चारों ओर कोट होते हैं, कोट समझते हैं ना, पहले जैसे किलों के जैसे बाहर वो बड़ी बड़ी दीवारें होती थी उसको कोट कहते हैं। हाँ, वो उसकी ऊंचाई चौड़ाई भी बताई कितने, वो 37.5 योजन ऊंचाई है, चौड़ाई 12.5 वगैरह वगैरह। और उन कोटों के मध्य में प्रवेश करने के लिए दरवाजे होते हैं। दरवाजों के ऊपर वो उनके वहां पर भी प्रासाद पाए जाते हैं और उसके अंदर, उस प्रासाद के अंदर सुधर्मा नामक सभा होती है। देखो जहां जहां ऊपर वैमानिकों की भी चर्चा आएगी, हर इंद्र की जो सभा है उसका नाम है सुधर्मा सभा। वहां वो इंद्र विराजमान होने के स्थान होते हैं, उनकी जो पट्ट देवियां हैं उनके स्थान होते हैं, उनके लोकपाल कहाँ बैठेंगे, उनके वो पारिषद वगैरह कहाँ बैठेंगे, उसके हर एक की निश्चित जगह होती है, उसको कहेंगे सुधर्मा सभा।
पांच नगर जैसे किन्नर का बताया तो सब किन्नर देव देव वो पांच नगर में रहेंगे कि और भी?
नहीं नहीं, ये तो इंद्र के नगर हुए,
खुद इंद्र का,
इंद्र का, हाँ ये इंद्र के नगर हुए। बाकी अंतरों के अन्यत्र पर्वतों पर है, वृक्षों पर है, अन्य द्वीपों में है, बहुत जगह है।
बाकी किन्नर देव
किन्नर, देखो आप निकालना पेज नंबर 81, व्यंतरों के कुल बताइए, किन्नर किम पुरुष मोहरक वगैरह वगैरह। अभी किन्नर ये कुल का नाम हुआ और उसके दक्षिण इंद्र का नाम किम पुरुष और उत्तर इंद्र का नाम है किन्नर। इस किन्नर की मैंने बात की, ये किन्नर इंद्र है, उसका जो कुछ पूर्व उसके अपने पांच नगर है।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो कोमली जी वही नगर में रहती है कि ये नगर तो इंद्र का ही है?
वो इंद्र का ही होता है, फिर उसके साथ अन्य भी देव रहेंगे वहाँ पर, उसकी देवियाँ रहे, उनके महल अलग हो गए।
हमारे यहाँ नंदन की रानी है, उनके पांच सात महल है, लेकिन वो उनका जो महल है उनको खुद ही रहती है।
हाँ, यहाँ पर भी इंद्रों की ही होती है और उनके भी, देखो यहाँ आगे लिखा है, देखो ये जो आठ लिखे हैं ना व्यंतरों के कुल, उसके नीचे 82 पेज पर कि इंद्रों की दो दो वल्लभी का देवांगना है, उनकी एक एक हजार परिवार देवांगना है, ये उनके भी, मगर उनके भी महल वगैरह अलग से हो गए। ये इंद्रों के नगर है, अब नगरों में वो नगरवासी वगैरह रहेंगे जो कुछ उनके अंदर जो कुछ रहते हो, परंतु अलग अलग टाइप के जो व्यंतर है वो अलग अलग जगह भी पाए जाते हैं। ये बात आगे आएगी। देखो अन्य व्यंतरों के जो है ना, ये तो इंद्रों की बात है ये सब, क्योंकि इंद्रों का भी परिवार बहुत बड़ा होगा और सामान्य अन्य जो उनके देव होते हैं, उनके सामानिक है, उनके पारिषद है, वो उनके रहने के और जगह होते हैं। इन पांच नगरों के बाहर के एरिया में वो भी पाए जाएंगे। तो देखो अपने यहाँ सुधर्मा की बात चल रही है, तो सुधर्मा सभा नाम सुना होगा, इंद्रों की सभा को सुधर्मा सभा कहते हैं। अपने यहाँ नहीं, पार्लियामेंट की कैसी है, हमारे यहाँ उसको लोकसभा कहते हैं ना।
तो ये सब इंद्रों की बात करते हैं।
हाँ, हर एक इंद्र की अपनी अपनी है,
उसका नाम ही सुधर्मा,
सुधर्मा सभा। हाँ, उनके भी सुधर्मा सभा कहते हैं। हाँ, उनके सुधर्मा सभा कहते हैं। तो वहाँ इंद्र, सामानिक, लोकपाल आदि सब बैठते हैं। आपके पार्लियामेंट में भी कोई विशिष्ट होगी, हमने तो वहाँ के इंडिया की देखी है टीवी पर, वैसे यहाँ पर आपने भी देखा होगा। वहाँ कौन सी दिशा में कौन बैठेगा, उनकी देवियाँ कहाँ बैठेगी, इनके निश्चित स्थान होते हैं, क्योंकि उनकी एक दो नहीं होती, बहुत सारी देवियाँ होती, उसमें कुछ पट्ट देवियाँ यानी पट्ट रानी जैसी होती है और कुछ सबॉर्डिनेट होती है, बहुत सारी होती है, और अन्य भी हमने देखे ना, उनके लोकपाल है, सामानिक है, पारिषद है। नगर के बाहर दो दो हजार योजन आगे जाकर चारों दिशाओं में 1,00,000 योजन लंबे और 50,000 योजन चौड़े रमणीक वनखंड अर्थात बाग होते हैं। इन इंद्रों की जो गणिका महत्तरी होती है, उनके नगर भी अपने अपने इंद्रों के द्वीप में ही अपने अपने इंद्रों के इंद्रपुरी के दोनों पार्श्व भागों में होते हैं। वे 84,000 योजन लंबे चौड़े होते हैं। अभी गणिका महत्तरी यानी अभी ये उनकी कुछ देवियां होती है, कुछ परिवार देवियां होती है, अभी इनको गणिका महत्तरी कहते हैं, ऐसा उसका कुछ वर्णन आता है। अन्य व्यंतरों के नगर अनेक द्वीप और अनेक समुद्रों में होते, ये बात बताइए, ये इंद्रों की बात खास बताई और अन्य भी जो व्यंतर है उनके अन्य अन्यत्र भी उनके निवास स्थान पाए जाते हैं। इन नगरों को भवनपुर कहते हैं। ये नगर किसको कहना है? जो समतल भूमि पर है वो नगर है, और जो बीच बीच में अन्य सतहों पर है वो आवास है, और नीचे जो जमीन के अंदर है वो भवन है। ऐसे यंत्रों के तीनों ही टाइप पाए जाते हैं। देखो, रत्न प्रभा पृथ्वी के खर भाग में यंत्रों के 14,000 भवन है, और पंक भाग में राक्षस कुल के व्यंतरों के 16,000 भवन है। यहाँ भवनवासियों के भी है और व्यंतरों के भी पाए जाते हैं। जमीन या समुद्र से एक हाथ की ऊंचाई से लेकर लाख योजन ऊंचाई तक व्यंतरों के रहने के जो स्थान है उन्हें आवास कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जमीन के ऊपर या समुद्र के ऊपर एक हाथ छोड़ दो, और उतने लेवल पर उनके जो कुछ रहने के ठिकाने होंगे ये हमें दिखाई नहीं देंगे, और उसके कोई सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। हम कहेंगे हमें तो ये जमीन पर हमारा घर खड़ा है, तो उनके तो ऐसे ही अंतराल में होते हैं। अभी उनके जो अलग अलग नींव ने हमें दिखाई नहीं देती ऐसे, हाँ वो तो उनके उस टाइप के कंस्ट्रक्शन होता होगा जो कुछ है, जैसे उनके शरीर अलग टाइप के होते हैं वैसे ही है। देखो अभी ये कहाँ कौन से हाइट पर कितने कौन से देव रहेंगे उनके नाम भी बताए यहाँ पर। पृथ्वी से एक हाथ ऊपर क्षेत्र में जिनके आवास है वे नीचोपपाद है, उनका नाम ही नीचोपपाद है। उनके ऊपर 10,000 हाथ ऊपर के क्षेत्र में दिग्वासी है, उनके ऊपर 10,000 हाथ ऊंचे क्षेत्र में अंतरनिवासी है, उनके ऊपर 10,000 हाथ ऊंचे क्षेत्र में कुष्मांड है, कुष्मांड उसके ऊपर 20,000 हाथ ऊंचे क्षेत्र में उत्पन्न नाम के व्यंतर है, आगे ऊपर ऊपर 20,000 हाथ के अंतराल से क्रम से अनुत्पन्न, प्रमाणक, गंध, महागंध, भुजंग, प्रीतिक और आकाशोत्पन्न व्यंतर है। इनके आवास हमें दिखाई नहीं देते तथा इनके लिए किसी आधार की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने पहले भवनवासी में देखे वैसे यहाँ पर भी उनका उच्छ्वास यानी श्वासोच्छ्वास कुछ अधिक 5 मुहूर्त होने पर और उनका आहार कुछ अधिक 5 दिन होने पर होता है। अभी उनकी आयु भी अलग अलग है। नीचोपपाद वगैरह जो हमने अंदर देखे हैं, हमने जो क्रम से देखे तो नीचोपपाद की 10,000 वर्ष की आयु है, दिग्वासी की 20,000, अंतर्निवासियों की 30,000, कुष्मांडों की 40,000, उत्पन्नों की 50,000 वर्ष, अनुत्पन्नों की 60,000, ऊपर ऊपर के सतह पर रहने वाले हैं ना ये, प्रमाणकों की 70,000, गंधों की 80,000, महागंधों की 84,000 वर्ष, भुजंगों की पल्ले का 8वां भाग, प्रीतिकों की पल्ले का 4था भाग और आकाशोत्पन्नों की आधा पल्ले आयु होती है। अब ये तो हमने अधोलोक में रहने वाले देवों की बात देखी, भवनवासी और व्यंतर। ज्योतिषी कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में। उनकी चर्चा हम मध्यलोक में करेंगे। अभी हम ऊपर यानी ऊर्ध्वलोक में रहने वाले देवों की चर्चा करेंगे, वैमानिकों की। ऊर्ध्वलोक में रहते हैं क्योंकि मध्यलोक से नीचे अधोलोक है। पहले हमने नरकों को देखा, व्यंतर और भवनवासियों को देखा। अधोलोक में व्यंतर मध्यलोक में भी रहते हैं जो अभी हमने देखे। मध्यलोक में ज्योतिषी रहते हैं परंतु उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे मध्यलोक के साथ। अभी ऊर्ध्वलोक में जो वैमानिक देव रहते हैं उनकी चर्चा चलेगी। देखो ऊर्ध्वलोक यानी सेंटर से ऊपर 7 राज्य है वो ऊर्ध्वलोक है। हाँ अभी तक अपनी चर्चा कहाँ की हुई? ये यहाँ पृथ्वी से लेकर नीचे तक ये एक राज्य इसमें एरिया में त्रसनाली में हमने देखे नरक भी होते थे और यहाँ तो सारे क्या क्या होते अभी हमने देख लिया। व्यंतर यहाँ पर भी पाए जाते हैं परंतु अभी इसके ऊपर यहाँ से ऊपर तक की बात चलेगी। देखो यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसा जो लिखा है ना, ये स्वर्गों के नंबर डाले वहाँ पर, उसके नाम वगैरह हम यहाँ अपने पुस्तक में देखेंगे। देखो 84 नंबर के पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ, यह ऊर्ध्व लोक 7 राज्य प्रमाण ऊंचा है, मेरु तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। मेरु तल कहाँ है, तो जमीन से 1000 योजन उसकी नींव है ना, वो मेरु का तल है, वहां से ये हाइट नापनी है, वो लोकाकाश का भी सेंटर है वहां पर। यहाँ त्रस नाली में ये सभी विमान है, क्योंकि हमने देखा त्रस जीव त्रस नाली में ही रहते, बाहर नहीं रहते हैं। विमान अर्थात पृथ्वी के खंड जिसके ऊपर असंख्यात असंख्यात देव रहते हैं, नरकों के समान स्वर्गों में भी पटल पाए जाते हैं। याद है नरकों में हमने देखे थे 49 पटल थे। 16वें स्वर्ग तक के स्वर्ग 8 युगलों में पाए जाते हैं। 8 युगलों में पाए जाते हैं अर्थात क्या, एक एक लेवल पर दो दो है, दक्षिण बाजू के और उत्तर बाजू के, यानी एक लेवल पर एक पटल पर बहुत सारे विमान हैं। तो दक्षिण के आधिपत्य में वो सारे विमान है और उत्तर के आधिपत्य में उसके अपने विमान है, तो उसको दक्षिण का स्वर्ग, उसके नाम लेकर हम अभी कहेंगे उसको, या उसको पहला दूसरा कहेंगे, तीसरा चौथा कहेंगे, एक एक लेवल पर उनके विमान होते हैं। तो ये 8 युगलों में होते हैं, प्रत्येक युगल में जो पहला नाम है वह दक्षिण का स्वर्ग है और दूसरा नाम है वो उत्तर का है। जब हम सौधर्म ईशान कहेंगे तो सौधर्म दक्षिण का है और ईशान उत्तर का है। सनत कुमार महेंद्र कहेंगे तो सनत या सनत कुमार दक्षिण का है और महेंद्र वो उत्तर का है। अभी उनके नाम हम देखते हैं, उसके नीचे देखो 1 और 2 अखरा डाला है, ये सौधर्म और ईशान है। इसका अर्थ क्या, पहला स्वर्ग सौधर्म है, दूसरे का नाम है ईशान, तीसरा चौथा सनत कुमार और महेंद्र, 5वें 6ठे का नाम ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, यानी 5वें का नाम ब्रह्म स्वर्ग और 6ठे का नाम ब्रह्मोत्तर स्वर्ग, 7वें और 8वें है लांतव और कापिष्ठ, 9वें और 10वें है शुक्र और महाशुक्र, 11वें 12वें है शतार और सहस्रार, 13वें 14वें है आनत और प्राणत, और 15-16 है आरण और अच्युत। यहाँ तक बात ख्याल में, इनके नाम केवल अभी हम देख लिए हमने। यहाँ पर 4 नंबर 14 में भी हमने कल उसके नाम देखे थे। अब ये आपका पास जो चार्ट है वो निकालना, क्योंकि नजदीक से वो पढ़ने को भी आसान होगा। 14 नंबर देखो, आपके पास जो चार्ट है जहाँ हमने मंगलाचरण गया था ना, उसके बाजू में 14 नंबर का चार्ट, तो नीचे से ऊपर पढ़ना ये नाम जो है वो सौधर्म ईशान सनत कुमार महेंद्र इत्यादि इत्यादि लिखे हैं। हाँ, और बीच में क्या है, नीचे पटलों की संख्या लिखिए, टोटल 63 लिखा है। देखो अब नीचे से ऊपर पढ़ेंगे हम, पहले और दूसरे के मिलकर, क्योंकि एक पटल पर दोनों ही पाए जाते हैं, दक्षिण के भी और उत्तर के भी, तो टोटल कितने 21 पटल है। तीसरे चौथे में 7 है, 5वें 6ठे में 4 है, फिर 2, फिर शुक्र युगल का 1 है, शतार युगल का 1 है, आनंद आदि 4 के 6 है, फिर ऊपर 3, 3, 3, 1, 1। अब उनमें विमानों की संख्या कैसी है, तो देखो सौधर्म ईशान में लिखा है 32,000 प्लस 28,000, ये टोटल मिलकर यहाँ विमानों की संख्या है। सनत कुमार महेंद्र की ये 1,20,000 है, नहीं ये 32 लाख है और ये 8 लाख है, फिर ऊपर वो युगलों की मिलकर ही टोटल संख्या बताइए 4 लाख, फिर 50,000, 40,000, 6,000, फिर 700। वो ग्रेवेकों के देखो, ग्रेवेक ये विमानों के नाम है, उसमें नीचे पहला ग्रेवेक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे 9 ग्रेवेक एक के ऊपर एक है, तो नीचे के 3 का एक ग्रुप बनाया, उसको अधो ग्रेवेक कहा, वो 700 विमान है। बीच वाले 3 है उसमें 107 है, नहीं अधो ग्रेवेक में 111 है, बीच वाले में 107 है, ऊपर के 3 में 91 विमान है, ग्रेवे एक के ऊपर एक नव है, उसके ऊपर एक ही लेवल पर टोटल नव विमान है। हाँ, तो वो है नव टोटल उसके विमान, सेंटर में एक और बाजू में दिशा और विदिशा में, और लास्ट वाला जो अनुत्तर है वहाँ पांच है। अभी इसकी बात हम यहाँ पुस्तक में पढ़कर देखेंगे। अभी 85 पेज पर देखते हैं। इन 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रहवेग है, उनके तीन तीन के ग्रुप्स, तीन ग्रुप्स है। नीचे के तीन अधस्तन, अधस्तन का अर्थ होता है नीचे के, अधस्तन ग्रहवेग, मध्य के तीन मध्यम ग्रहवेग और ऊपर के तीन ऊपरी ग्रहवेग। इन तीनों के प्रत्येक के तीन तीन है। अभी अधो वाला तीन का ग्रुप है ना, उसमें भी अधो मध्य और उपरिम, ये अधो के लिए हेट्ठी में शब्द भी आता है, शायद आपने कभी प्राकृत में पढ़ा होगा, हेट्ठी में मध्य में उपरिम, अधो में, फिर मध्यम में उसमें भी हेट्ठी में मध्य में उपरिम, ऐसे तीनों में तीन तीन भेद करेंगे। अभी उसके नीचे की दो लाइन, इनके ऊपर एक ही सतह पर एक ही लेवल पर 9 अनुदिश है और उनके ऊपर एक ही सतह पर 5 अनुत्तर विमान है। आपने शायद सर्वार सिद्धि नाम सुना होगा, सबसे टॉप मोस्ट है ये, अनुत्तरों में सेंटर का जो है वो सर्वार सिद्धि नाम का विमान है। अब इनका स्थान देखते हैं, ये कितने हाइट पर कौन से विमान है उसको हम देखेंगे। मेरु तल से 1.5 राजू ऊपर तक सौधर्म ईशान युगल है। अब इसको देखने के लिए आप वही पहला ये जो चार्ट है वही निकालना, एक नंबर का ही ठीक रहेगा। हाँ, एक दो भी आप साथ में देख सकते हैं। देखो यहाँ ये मध्य लोक है और यहाँ एक दो लिखा है, तो यहाँ तक एक दो है, यहाँ तक तो ये उसकी कितनी है, तो 1.5 राजू ऊंचाई तक है। चार्ट नंबर एक में देखो, दो में देखो। हाँ, दो में फ्रंट व्यू है, एक में तो त्रसनाली में दिखाई देता है। इस चार्ट से भी आपके पास जो चार्ट है ना उसमें और क्लियर है, जो कंप्यूटर पर बनाया है वो चार्ट आप इसमें लगा सकते तो देखना वो क्लियर होगा। आप अपने चार्ट में देखना पुस्तक में, तो देखो चार्ट दो लगाओ, चले
दो लगाओ,
वो फ्रंट व्यू में आपको और क्लियर होगा। हम यहाँ तब तक देख लेते, देखो। हाँ, ये उन्होंने निकाला, तो पहला और दूसरा स्वर्ग कितने तक है, कितने तो 1.5 राजू तक है, मध्य लोक से 1.5 राजू ऊपर तक। देखो ये जो यहाँ क्लियर होगा आपको, यहाँ से यहाँ तक, मध्य लोक से यहाँ तक 1.5 राजू हाइट तक, क्योंकि इनके कितने पटल है हमने देखे थे, 31 पटल है, तो इतने लेवल पर वो सारे हैं। तीसरा और चौथा है वो यहाँ से यहाँ और 1.5 राजू ऊपर तक जाके तीसरा चौथा है। इसको थोड़ा नीचे लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अभी उसके बाद क्या है, आधे आधे राजू पे सारे ऊपर के विमान है। आप अपने पुस्तक में देख लो, दूसरे नंबर के चार्ट में पांचवा छह, क्योंकि हर एक में बीच में एक लाइन डाली है, सातवा आठवा नवा दसवा ग्यारहवा बारहवा, ये कैसे आधे आधे रह चुके हैं। देखो फिर से हमारे पास 16 स्वर्ग तक हम देखेंगे
अपने चार्ट में, देख लो
अपने चार्ट में वो क्लियर होगा आपको। एक और दो तीन 1.5 राजू, तीसरा और चौथा और 1.5 राजू, टोटल 3 राजू हो गए। पांचवा छठा और सातवा आठवा, आठवें तक और एक राजू हो गया, चार राजू हो गए। नौ दस ग्यारह बारह और एक राजू, कितना हुआ, पांच राजू। तेरह चौदह पंद्रह सोलह, छह राजू, यानी 16 स्वर्ग 6 राजू तक है। उसके ऊपर 9 ग्रहवेग लिखा है वो आधे राजू में है, अनुदिश और अनुत्तर सब मिलकर एक राजू में होते हैं, और उसके ऊपर सातवें राज, सात राजू ऊपर वो ऊपर की पृथ्वी होती है। समझ में आई ये बात, नहीं ये सात राजू ऊपर तक है ना, तो ये जो सबसे ऊपर कौन सा है, अनुत्तर के पांच विमान है, उसके ऊपर क्या है, उसके 12 योजन ऊपर जाके आठवीं पृथ्वी सिद्ध शिला, तो वो स्वर्गों के जीव वहां जाके टच करते होंगे कि नहीं? नहीं कर सकते, जा नहीं सकते ऊपर अपने, क्योंकि हर एक अपने स्वर्ग की अपनी अपनी ऊपर की लिमिट है। ये जो गमन करते हैं, विहार करते हैं, तो 16वें स्वर्ग तक के ही विहार करते हैं। ऊपर के देव अपने अपने ही विमानों में रहते हैं, वो इधर उधर नहीं जा सकते। वो नीचे गमन शक्ति है, परंतु कभी भी गमन करके नीचे नहीं आते। उनके इतने ऐसा भाव ही नहीं है। जैसे आपके पास फैसिलिटी हो परंतु आप उसका यूज करें, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? तो ये अनुदिष्ट तत्व हमने देख लिए हैं। ये नाम अपने लिए नए है ना, इसलिए अभी हमने इन सबको कौन से कहाँ है उसका हमने स्थान देख लिया है। ये द्रैवेग का नाम हमने आपने बहुत बार सुना होगा, हाँ ना? क्यों? क्योंकि शास्त्र में आता है ना, ऐसा भी होता है कि जो मुनि जैसा उन्होंने दिगंबर वेश धारण किया है, वन में रहते हैं, व्रतादियों का पालन करते हैं, फिर और मरकर द्रैवेग में भी जाते हैं, परंतु यदि आत्मा का अनुभव नहीं है तो थोड़ा भी सुख नहीं प्राप्त करते। और वो द्रैवेग का भी कुछ भव मिला और यदि सम्यक तो नहीं मिला तो भी कुछ नहीं ना, फिर उनका भव भ्रमण तो चल ही रहा है। इसीलिए कल जब बात आई थी, ये देव का भव परिभ्रमण की बात चल रही थी ना, परावर्तन, भव परावर्तन, उसमें कितनी आयु ली थी अपने 31 सागर की, वहाँ 33 सागर वाले देव तक आयु नहीं बढ़ाई थी, याद है कि भूल गए? क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में वहाँ तक जा सकता है जी, इसलिए, क्योंकि समय दर्शन होने पर परावर्तन छूट जाता है, उसके आधे पुद्गल परावर्तन के अंदर ही अंदर मोक्ष चला जाता है। इसलिए परावर्तन करने वाला जो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जाता है देव में? 31 सागर तक। ये जो ग्रैवेग की अंतिम ग्रैवेग की आयु है वो 31 सागर की है, वहां तक जा सकता है। ये तो अपनी बात हुई थी, अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये सहनन आदि की भी बात हमने पहले, कौन कहाँ जाता है उसकी बात हमने देखी थी, यही बात आगे भी उन्होंने फिर दोबारा समझाई है। यहाँ पर वात वाले के ही फिर दोबारा किसी के प्रश्न थे इसलिए वहाँ तक हम गए थे। अभी हम आते हैं यहाँ 93 पेज पर। असंख्यात, वैसे सौधर्म इंद्र के अंदर वो 32 लाख विमान है, 31 पटलों में सौधर्म के अंदर, और ईशान के 28 लाख उसके विमान है। ये 14 नंबर का चार्ट निकला, देखो 14 नंबर,
आपके पास है?
आपके पास निकालना,
लाल।
हाँ, अभी वो बात आएगी शायद। जैसे हमने नरकों में क्या देखा था, एक एक पटल में सेंटर वाला जो बिल था उसको इंद्र कहते थे, और बाजू में थे उसको श्रेणीबद्ध कहते थे। चलेगा, ये भी चलेगा, ये हैंड रिटन है ना, कोई बात नहीं, चले। देखो यहाँ तो ये सारे, अभी यहाँ कलर अलग है, ओरिजिनल ये लाल था, ये तो जो कुछ वायलेट जैसा कलर दिख रहा है ये सेंटर का है, वो इंद्र कहेंगे, और ये चार दिशा में चार जो ऐसे है उसको श्रेणीबद्ध कहेंगे। तो दक्षिण के जो इंद्र है तो ये पूर्व की श्रेणीबद्ध की लाइन, पश्चिम की श्रेणीबद्ध की लाइन, ये सारा पूरा, ये जितने सारे विमान है वो सब दक्षिण के विमान कहलाएंगे, वो दक्षिण इंद्र के आधिपत्य में होते हैं। और ये श्रेणीबद्ध जो छोड़ो, और उसके ऊपर जो कुछ है ये सारे ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, वो सारे ईशान इंद्र के अंदर है ना, वो ईशान स्वर्ग के विमान कहलाएंगे वो सारे। तो इनके टोटल यहाँ लिखे देखो, सौधर्म ईशान के, सौधर्म के 32 लाख, और ईशान वाले के 28 लाख टोटल विमान, क्योंकि उत्तर वाले के पास, दक्षिण वाले के पास ज्यादा है ना यहाँ की, क्योंकि ये श्रेणीबद्ध की लाइन पूरी इनके अंदर आती है, इंद्रक विमान भी इनके अंदर आता है, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा है।
विमान मतलब खंड?
हाँ, वो पृथ्वी के खंड है जिनके ऊपर असर नहीं, महल को नहीं कहते। देखो यहाँ पर भी लिखा है, ये सौधर्म विमान में जो प्रथम पटल है, प्रथम पटल किसको कहेंगे? नीचे के नरकों में प्रथम पटल ऊपर के पटल को देखते थे हम, और फिर हम नीचे नीचे जाते थे, दूसरा तीसरा चौथा। स्वर्गों में जब गिनेंगे तो नीचे का जो है हम नीचे से ऊपर गिनेंगे, तो नीचे का वो पहला पटल है, उसमें क्या है, सेंटर में एक इंद्रक है जिसका नाम है ऋतु इंद्रक, 45 लाख योजन वाला। नरक का भी सेंटर का बिल 45 लाख योजन का देखा था हमने। स्वर्गों में भी बीच वाला इंद्र कितने ही, 45 लाख योजन का है। और श्रेणीबद्ध मात्र दिशाओं में होते हैं वो, 62 होते, इधर 62, इधर 62, ऊपर 62 और नीचे 62, और प्रति पटल एक एक की हानि होती चली जाएगी ऊपर। श्रेणीबद्ध, हाँ,
तो दोनों में
31 दोनों के, क्योंकि एक ही लेवल पर दोनों के होते हैं, एक एक पटल आधा उनका आधा इनका, परंतु आधे में दक्षिण की तरफ ज्यादा है, उत्तर की तरफ ये बीच वाली जो लाइन है ना, ये उत्तर की तरफ नहीं, ये पूरी दक्षिण की तरफ आती है, सेंटर वाली लाइन, क्योंकि सेंटर किसको देना, दक्षिण वाले को देना, और सेंटर के ऊपर का उत्तर वाले को देना। हर लेवल में ऐसे ही होगा, दक्षिण उत्तर का विभाजन ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी प्रति पटल एक एक की हानि होती चली जाएगी, एक एक पटल में एक एक विमान श्रेणीबद्ध का कम होते चला जाएगा। देखो ये बात तो हमने कल भी देखी थी कि देवों की जितने सागर की आयु होती है उतने हजार वर्ष बीतने पर उनको सेंसेशन होता है, भूख लगती है, और फिर भूख लगती है तो क्या होता है, कंठ से अमृत झरता है, उनकी तृप्ति होती है। हमारे जैसा मुंह से ऐसा जिसको कौलाहार कहते हैं, ऐसा उनका आहार है ही नहीं, किसी भी देव का नहीं, न व्यंतरों का है न किसी का है। दांत नहीं है, ये तो सारे सप्त धातु है, ये तो नहीं होते दांत, हमारे जैसे दांत वगैरह नहीं होंगे, ना दांत है, ना केस है, ना चमड़ी है, ना हड्डी है, ये तो वैकिरिक शरीर उनका जो होता है। हाँ,
वहाँ डेंटिस्ट भी नहीं
है। महेंद्र भाई पूछते कि दांत है कि नहीं, तो ये कह रहे कि डेंटिस्ट भी नहीं। हाँ देखते हैं, वो ऐसे रूप लेते हैं ना, वो यहाँ आएंगे तो हमारे जैसा रूप लेके आते हैं, और उनके चित्र वैसे, अभी उनके जैसे जो हर एक की अलग अलग जो हाइट बॉडी वगैरह बताए ना, वैसे उनके शरीरों के रंग बताएंगे। हाँ वैसे भी संगी पंचेन जी है तो आकार तो ऐसे होंगे जैसे हमारे जैसे हाथ पैर मुंह वगैरह। सेंटर का
वो
ऊपर है, हाँ हाँ, क्योंकि सेंटर में सुदर्शन मेरु है ना, उसके ऊपर है वो, वहाँ तो कहते हैं उसके एक बाल के ऊपर है, मेरु पर्वत की चोटी है शिखर, उसके एक बाल छोड़कर उसके ऊपर ये शुरू होती है उसकी लिमिट, ऊपर के स्वर्गों की। हाँ ये ऊपर है ना, लाख योजन तक तो मेरु पर्वत है,
ये देखो ये मेरु
मध्य लोक से लाख, हाँ, और उसके ऊपर उसके स्वर्ग शुरू हो जाते हैं,
इसके ऊपर एक आड़े बाल के ऊपर स्वर्गों की रचना है,
उसके वो 31 पटल होंगे एक के ऊपर एक। उस दिन माता बात आई थी ना, उनकी अपनी भाषा होगी, हमको शिविर में भी किसी ने पूछा था, उन्होंने बोला आप जब जहाँ जाएंगे, हाँ समय, हाँ वो जानकर हमको भी भेज बता देना कौन सी बात। तो एक माता जी आई थी 85 ईयर्स की, और उन्होंने सरलता से प्रश्न पूछा कि देव इतने वर्षों तक कुछ खाते पीते नहीं है तो उनको तप होता है कि नहीं, ये बोल बता। वेरी गुड क्वेश्चन, कि देव इतने काल तक आहार नहीं लेते तो उनको तप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उनका प्रश्न था। ये उसका उत्तर भी दिखा है, देखो 93 पेज पर हम देखेंगे। देखो एक प्रश्न बहुत मार्मिक है, मिला ऊपर से पांचवी लाइन, बात यह है कि देवों की जितने सागर वर्षों की आयु होती है उतने हजार वर्ष बीतने पर उनके आहार की इच्छा होती है और वे आहार लेते हैं, अर्थात उनके कंठ से अमृत झरता है और उनकी तृप्ति हो जाती है। उनका आहार हमारे जैसा नहीं होता, ना वे कुछ बनाते हैं ना ही खाते हैं, यानी उनका कवलाहार नहीं होता। कवलाहार यानी हम जो हाथ से लेके ग्रास खाते हैं वो कवल लेके। पेज नंबर 93। इस हिसाब से अब देखो प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। इस हिसाब से सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु 33 यानी 33 सागर की होती है तो उनके 33,000 वर्ष बाद आहार की इच्छा होती है, ये तो नक्की हुआ ना। इस पर एक माता जी का प्रश्न है कि देव इतने वर्षों तक आहार नहीं लेते तो उसको तप कहेंगे या नहीं कहेंगे। अब उसका उत्तर पढ़ेंगे। देव हजारों वर्षों तक आहार नहीं लेते, इतना ही नहीं उन्हें तो इतने वर्षों तक आहार की इच्छा भी नहीं होती, फिर भी उनके तप नहीं होता, उसे तप नहीं कहते। और हमें इच्छा तो बहुत होती है, बहुत भूख लगती है, फिर भी हम इच्छाओं को दबा दबा कर 24 घंटे उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते, तो हमें लगता है कि हमने तप किया। दशलक्षण पर्व में पर्युषण पर्व में 1, 5, 10 दिन के उपवास करके मानते हैं हमने बड़ा तप किया। हम भोजन नहीं करने का नाम तप है ऐसा समझते हैं, इसलिए प्रश्न उठ रहा है। उनको प्रश्न क्यों उठा कि हम ऐसा मानते हैं, इसलिए प्रश्न ये है कि देवों ने हजारों वर्षों तक भोजन नहीं किया तो उनके तप क्यों नहीं होता। तो तप कहो या संयम कहो, वह तो अंतरंग में जो मुनि योग्य स्थिरता होती है उसे कहते। आत्मानुभव में जो लीन रूप अवस्था है वही तप है, वही संयम है, वही प्रतिक्रमण है, वही सामायिक है, सच देखा जाए तो। और बाह्य में जो हम कहते हैं वो उपचार से उस पर आरोप आता है। जिसके अंतरंग में है उतनी स्थिरता, उसके जो बाह्य में उपवास आदि होते हैं उसको तप कहने में आता है। सच्चा तप तो अंतरंग में स्थिरता को कहते हैं। उपवास किसे कहना? उप अर्थात नजदीक यानी पास, और वास अर्थात रहना। किसके पास रहना? किचन के पास, आत्मा के पास, अपनी आत्मा के पास यानी आत्मा में रहना, लीन रहना, ऐसा उसका अर्थ है। ऐसी अवस्था में बाह्य में आहार आदि के विकल्प नहीं आते, इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। इच्छा के उत्पन्न नहीं होने का नाम इच्छा निरोधक तप है, इच्छा को दबाने का नहीं। उपवास में तो कषाय एवं आहार को कम किया जाता है। हम उपवास के नाम पर भोजन को तो छोड़ देते हैं परंतु कषायों की वृद्धि होती रहती है। आपने देखा होगा हम उपवास करते हैं और यहाँ तो सहा नहीं जाता, फिर हाय 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 संतोष परिणाम चलते रहते हैं। हाँ, कुछ भी बाहर उपचार करते हैं, ठंडे बाहर से गले को पानी लगाएंगे, कुछ होगा। मैं प्रैक्टिस करती थी तो मुझे भी विजिट के लिए बुलाया एक माता जी ने, कोई मारवाड़ी महिला थी, उसने उपवास किए थे और फिर महावीर का नाम ले लेकर चिल्ला रहे थे, महावीर भगवान, हे महावीर भगवान मुझे छुड़वाओ अभी ऐसा। अरे भाई तू क्यों उपवास किया इतना? तो क्या लोग सोचते कि चलो दुकान चलेंगे या ताश आदि खेलकर टाइम पास करेंगे? हमने देखे मुंबई में ऐसे लोग। हाँ, आजकल तो टीवी है, उसके सामने बैठकर लोग समय बर्बाद करते हैं। अभी और भी चर्चा है, उसको छोड़ेंगे हम।
देखो
हाँ,
एक बार निश्चित होते हैं। आपने जो प्रश्न पूछा था कि क्या उनके दांत होते हैं, तो होते नहीं, उनका भोजन ही नहीं होता है, गले से अमृत झरता है। इसका अर्थ क्या हो गया? बहन पूछते वो भूत पिशाच। हाँ, अरे वे भी ऐसा ही है, उनके कुछ दिन के बाद जो भी उनका प्रमाण होगा उनको भूख लगती है। हमारे तुम्हारे वो माउस खाता है, ऐसा फाड़ के खाता है, आदमी का खाना खाता है, ये कुछ नहीं है। समझ रहे? वो हमारे तुम्हारे जैसा वेज नॉन वेज कुछ नहीं खाते। आगे
हाँ, देखो देखो ये सब की बात आ ही रही थी ना। यहाँ 94 पेज पर दूसरा पैराग्राफ। देवों के सम्यक तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ चौथे गुणस्थान तक का पुरुषार्थ है ना, उनका गुणस्थान चौथा ही रहेगा, ऊपर का नहीं, इसलिए उनके तप होता ही नहीं। क्योंकि चौथे गुणस्थान का नाम क्या है मालूम है? अविरत सम्यनिष्ठ, यानी वो व्रती नहीं है, अविरति है, असंयमी है। चौथा गुणस्थान तक तो असंयम है, न खाने को संयम या तप नहीं कहते, वस्त्र नहीं पहनने को संयम नहीं कहते हैं। सम प्लस यम अर्थात सम्यक रूप से जो अपनी आत्मा में स्थित है उन मुनिराजों के संयम होता है। जिसके आत्मा में स्थिरता नहीं है और बाह्य में ऐसे व्रतादि पाल रहे हैं, उसको संयम भी नहीं कहते, द्रव्य यम कहा है उसको। धवला नाम का शास्त्र है, उसमें ऐसे को द्रव्य यम, द्रव्य ने बाहर में तो व्रत पाल रहे है परंतु अंतरंग में सम्यक तो नहीं है। अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता होना ही सच्ची आराधना है, वही सामायिक है, वही आलोचना है, वही प्रतिक्रमण है, वही प्रत्याख्यान है और वही समाधि है। परंतु बाह्य में हम जो करते हैं, अंतरंग में इतनी स्थिरता हो, ये निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय सामायिक, निश्चय सब कुछ उसमें लगा लो और उसके साथ जो बाह्य में शुभ भाव होता है उसको व्यवहार से, उपचार से, ये प्रतिक्रमण सामायिक समाधि आदि सब नाम कहने में आते हैं। परंतु जिसको निश्चय अंदर है ही नहीं है और बाह्य में कुछ उसने कर लिया तो उसको वो नाम भी नहीं देंगे, वो तो केवल कोरी क्रिया रह गई है। जैसे एक महिला वो कूट रही थी चोखा, वो छिलके के साथ आता है ना, क्या कहते हैं उसको, हाँ जो कुछ बोलो आपकी भाषा में, तो क्या होता था कि वो तन, वो जो चावल नीचे बैठता था और ऊपर का जो पोतरा है छिलका वो ऊपर दिखाई देता था। तो दूसरी एक महिला आई, पूछा क्या कर रही हो, तो मैं तो चावल कूट रही हूँ। तो उसने देखा उसमें पोतरा है, वो कूट रही थी, तो उसने जाके क्या वो छिलका छिलका जमा किया और उसको कूटने लगी, तो उसको कितना चावल मिलेगा। ऐसे ही जो सचमुच मुनिराज है या जो समय दृष्टि है उनकी बाह्य क्रियाओं को देख लेता है या शास्त्र में से पढ़ता है कि मुनि का ऐसा ऐसा स्वरूप है, तो वो भी बाह्य आचरण तो करता है परंतु अंतरंग में कुछ है ही नहीं उसके, ना सम्य दर्शन है ना तत्व ज्ञान का आता पता है। तो उसके हाथ में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, एकाध स्वर्ग का मिलेगा और फिर वही मिथ्यात्व के साथ है तो यही चक्कर उसका चलता रहेगा। इसकी अभी है ना समय, एक प्रश्न है अभी, उसका जितना उत्तर हो सकता है मैं अभी पढ़ूंगी और ये हम आप सबका प्रश्न है। आप कहते हो कि आत्मा की दृष्टि करनी है और ये सारी तो बाहर की बातें हैं, फिर हम आत्मा में जाए या बाहर जाए, हाँ? उत्तर, आप आत्मा में जाना चाहते हैं तो अभी आप कौन हो, कहाँ हो, नहीं समझे, आप कौन है शीला बेन? हाँ शीला बेन, शीला बेन है, मनुष्य है और मुझे आत्मा में जाना है। क्या आप क्या मान रहे हैं अपने को, मनोज भाई? आप मनोज हो और आपको आत्मा में जाना है, कौन से आत्मा में जाना है? मैं स्वयं आत्मा हूँ, हाँ, ये शरीर तो संयोग है, तो हमने क्या माना, यह शरीर मैं हूँ और मुझे आत्मा में जाना है, चल रहे ना, हमारी भूल कहाँ हो रही है? देखो ये जो नीचे से तो दूसरा उत्तर है ना कि आप अभी कहाँ हो, हमें कहीं अंदर बाहर जाना नहीं है, हम स्वयं आत्मा ही तो है। तो दूसरा प्रश्न है, तो लोकाकाश का स्वरूप समझने में हमें बाहर दृष्टि करनी है या अंदर की ओर करनी है, आप क्या कहेंगे?
अंदर
करनी। देखो वास्तव में प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि जीवों को यह पता नहीं कि ज्ञान क्या है और दृष्टि क्या है, ये बहुत बड़ा गफला हो रहा है। ज्ञान अलग बात है, दृष्टि अलग बात है। देखो तो ये मुनिराजों उनकी अंदर की दृष्टि थी कि नहीं, जिन्होंने त्रिलोकसार लिखा, तो बाहर दृष्टि थी। देखो बाह्य चीजों के ज्ञान को बाह्य दृष्टि नहीं कहते, दृष्टि तो प्रतीति को कहते हैं, श्रद्धा को कहते हैं। देखो दृष्टि का सिंपल अर्थ क्या है, मैं किसने स्थापित किया है उसको दृष्टि कहते हैं, क्या कहा? मैं पना किसमें स्थापित किया है? अभी अभी आपने मैं पना किसमें स्थापित किया, तो ये देह में मैं पना स्थापित किया। हम स्वयं आत्मा है, आत्मा में मैं पना स्थापित हो जाए, कौन सा वो त्रिकाली शुद्ध आत्मा, उसमें मैं पना स्थापित करना, उसको कहेंगे दृष्टि। और ज्ञान, ज्ञान तो सबको जानेगा, ज्ञान को अपने शुद्धात्मा को भी जानेगा, अपने में उठने वाले राग द्वेष को भी जानेगा, शरीर को भी जानेगा, ज्ञान पर पदार्थों को भी जानेगा, ज्ञान तो पूरी दुनिया को जानेगा, क्योंकि जानना ये ज्ञान का स्वभाव है। हम दृष्टि के नाम पर ज्ञान को रोक लगाना चाहते हैं, हमको कुछ नहीं जानना है, क्यों? हमको आत्मानुभव करना है। तो कैसे आत्मा का अनुभव करना है, नहीं जानने वाले आत्मा का कि जानने वाले आत्मा का?
जानने वाला।
कितना जानने वाला? थोड़ा जानने वाला। क्या अपने को ही जानने वाले आत्मा को जानना है, क्या स्व पर सबको जानने वाले आत्मा को जानना है? अपने को ही जानने वाला आत्मा, यानी हमारे, हमने ऐसा आत्मा चाहिए जो अपने को ही जाने पर को जाने ही
नहीं।
ज्ञान का स्वभाव ही स्व पर प्रकाशक शक्ति है उसकी, वो ज्ञान का ही स्वभाव है। और हम विकल्प के नाम पर जानने पर ही मर्यादा लाना चाहते, हम इसको नहीं जानना चाहते, हम अपने आत्मा को जानना चाहते। जानो ना आत्मा को, आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा सबको जान रहा है, तो सबको जान रहा है ये, हम आत्मा को जानेंगे तो सबका ज्ञान यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? वो क्या कर रहा है? जान रहा है। तो जानने वाले आत्मा को जानना है कि नहीं जानने वाले आत्मा को जानना है? समझ में आया ना, ज्ञान और दृष्टि में क्या अंतर है? ये लोगों की इसलिए ऐसी भ्रमणा चलती है कि अभी हमको कुछ नहीं जानना, ये सब जानना है ना, तो हमको विकल्प होते हम इसको जानेंगे नहीं, वर हम अपने आत्मा को जानेंगे। यानी उनके दृष्टि और ज्ञान में डिफरेंस नहीं, उसकी बात हम और करेंगे। ये और भी उसका बहुत समझाया आगे, अभी अपना समय हुआ है, यही रुकेंगे हम। 24